सुंदरतापि तरुणापतम करुणया हरंती वीणामभंगरुदनतिशां वललिता शतविद्युता कलिंदगिरिनंदनी तटसुरजमालंबनी मदीयमतिचुंबनी भवसिताति कादंबनी यत्पादपद्मनखचंद्रमणिच्छाया विस्फुज्यतं किमपि गोपवधू सदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकारी कदाचित्कां करोति अनरपि च चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समरपयतु मुन्नतोज्ज्वलरसांसभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दा नारायणं नमस्कृत्य दोनोतरफे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कुछ ऐसी भावपूर्ण बात होती है जिसकी अभिव्यक्ति सरल और कभी कभी संभव नहीं है। आज श्रीमद् रूप गोस्वामी चरण का विरह उत्सव नहीं है, राधा श्री राधा कृष्ण श्री मिलन उत्सव है।
थोड़ा जोर से बोले
हाँ, आज श्री निवृत निकुंज में प्रवेश है। यहाँ हम सब लोगों जागतिक जीवों को विरह हुआ है, लेकिन श्री राधा गोविंद का परम मिलन संभव हुआ है। विश्वांगमय का आलोडन करने पर जितनी विपुल पुष्कल वांगमयी संपदा श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद के द्वारा उद्भावित आविर्भूत हुई है, उसका उसकी कोई सारा विश्ववांगमय उसका उपकृत है, कृतज्ञ है। उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु और अनेक अनेक ग्रंथ स्वयं हरिदास जी की समाधि में सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथाचार्य इन सब के समक्ष और इन समस्त महावैष्णवजनों ने रूप गोस्वामी बापा की कोमल कांत पदावली की भूरी भूरी प्रशस्ति की है और बड़े बड़े नैयायक और मीमांसक सांख्यवेत्ता वैशेषिककार साहित्य के मर्मज्ञ और संपूर्ण दर्शन शास्त्रों के ज्ञाता जब इसका अवलोकन करते हैं, आलोडन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सबसे दाद जब किसी वैष्णवाचार्य से श्रवण करते हैं तब आत्मविभोर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, बड़ौदा विश्वविद्यालय में जब भक्ति रसामृत सिंधु का प्रकाशन हुआ तो वहाँ के राज्यपाल और आमंत्रित गुजरात के सौराष्ट्र के महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वज्जन उपस्थित थे। मुझे भी जाने का सुयोग मिला तो वहाँ के मर्मज्ञ विज्ञों ने विद्वानों ने किस प्रकार से श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद के पाद पद्मों में अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि समर्पित की और संपूर्ण विश्व साहित्य को उनके कृतज्ञ रहने का वैसा उद्बोधन प्रबोधन और संबोधन प्रस्तुत किया। क्या कहें छोटे से थोड़े से शब्दों में, ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ वैमत्य है लेकिन पंडित राज जगन्नाथ एक और व्यक्तित्व है संस्कृत साहित्य में। रूप गोस्वामी पाद के साथ में उनका स्मरण भी साहित्यकार प्राय करते हैं। कुछ सामाजिक अतिक्रमण हुआ उससे उनको गला हुआ रांग पी करके प्राणदंड का दंड काशी के पंडित समाज ने घोषित किया। उन्होंने श्री गंगा का स्तवन किया और गंगा जी में कूद करके प्राण विसर्जन करने का उपक्रम करने लगे तो स्वयं गंगा जी ने प्रकट होकर के उनको पकड़ करके कहा कि ये इतना मूल्यवान आपका जीवन, इसे इन पंडितों के कहने से आप काहे को नष्ट कर रहे हैं, आप सीधे श्री जगन्नाथ जी पुरी पधारिए, वहां महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के सहारे खड़े हुए उत्तोलित बाहु से नेत्रों से अश्रुधारा विमोचन करते हुए अवस्थित हैं, उनका अनुग्रह प्राप्त करिए और वहीं आपको रूप गोस्वामी का साक्षात्कार भी होगा, फिर आप थोड़ा सा अपने ग्रंथ में संशोधन कर लीजिएगा जिससे कि वैष्णव विश्व भी आपके इस लाक्षणिक ग्रंथ को समादर प्रदान कर सके। मैंने वह पढ़ा था जब मैं लाहौर में एमए में पढ़ता था तो वहां एक गोस्वामियों के ऊपर संगोष्ठी हुई थी। उस संगोष्ठी में एक बहुत बड़े मनीषी विद्वान थे, उन्होंने कैसी भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि श्री गोस्वामी के चरणों में प्रकट करते हुए घोषणा की थी कि मेरी तरफ इशारा करके तो मैं इन्हीं को साक्षी करके कहता हूं कि सारे विश्व के साहित्यकारों की आलोचना करके उनके ग्रंथों का सम्यक समालोचन कर किया जाए तो रूप गोस्वामी के प्रतिम व्यक्तित्व कोई अन्यत्र अन्य प्राप्त नहीं हो सकता है। उन्होंने महाप्रभु के पास पंडित राज गए तब महाप्रभु अपने भावावेश शमन हुआ तो पंडित राज से कहा तो मैं जानता हूं आप क्यों पधारे हो, जाओ अपने रसगंगाधर में जो कि सबसे उत्कृष्ट संस्कृत का लक्षण ग्रंथ है, श्री हर्ष बहुत प्रौढ़ काव्य है, आचार्य के चौथे वर्ष में उसका थोड़ी सी भाग का अध्यापन होता है, बहुत कृष्ण है लेकिन स्मरणालंकार के उदाहरणों में और श्री गोस्वामी पाद की प्रति उपकृति व्यक्त करते हुए उन्होंने जब रूप गोस्वामी का ये श्लोक पढ़ा तुंडे तांडवनी रतिंदितनुते तुंडावनी लोधये कर्णक्रोध कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदभ्यस्पृहां चेतः प्रांगण संकेती विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनिता कियत् श्रीमृत ही कृष्णे ही वर्णन कई असाधारण श्लोक है। स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि मैंने नाम की महिमा आज के पहले साहित्य के किसी ग्रंथ में इस प्रकार की श्रवण नहीं की है। उसी की छाया में श्री पंडित जगन्नाथ ने भी एक श्लोक की रचना की है तो अद्भुत हो, लेकिन वो लेकिन इसी की आधानवित है वो। यद्वीका रसिका सीता समशिता स्फीतम निपीतम पय स्वर्याते न सुधाप्यधाई गतिधारंभाधर खंडिता तत्त्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णे यक्षरयोरियं मधुरमुद्गार क्वचिल्लक्षिता। सारे ये साहित्यिक थे, रसिक थे, प्राकृतिक रूप से रस की व्याख्या उसके विषय में ग्रंथ में कितने प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए, परंतु इस रूप गोस्वामी पाद के एक श्लोक को श्रवण करके और महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करके स्मरण अलंकार के समय में इस श्लोक को जोड़ करके कृष्ण नाम की अद्वितीय अद्भुत महिमा का जो उत्तमतम प्रकाश इनके द्वारा हुआ, तो फिर साहित्यिक विश्व में प्रेरित होकर के बड़ौदा विश्वविद्यालय में रूप गोस्वामी के अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, क्योंकि पहले हिंदी साहित्य में पढ़ने की सुविधा नहीं थी इन ग्रंथों की। दास गोस्वामी के श्लोक भी बड़े अद्भुत हैं। सनातन गोस्वामी को तो कई जगह चैतन्य चैतामृत में श्रीमद् महाप्रभु ने जगत गुरु कहकर के संबोधन किया है, और श्रीमद् रूप गोस्वामी के प्रति तो अति वात्सल्य था और महाप्रभु का अति अनुग्रह भी था, अनुराग भी था। लेकिन पहले तो कलकत्ता से तीर्थ की परीक्षाएं होती थी, अब होती हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उस समय सब लोग वहां हरिनामामृत व्याकरण भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि अन्यान्य ग्रंथों के अध्ययन का स्वाध्याय का सुयोग लाभ करते थे। लेकिन सारा ही जहां जहां भी संस्कृत का और अब तो हिंदी का भी, क्योंकि सब ग्रंथों का संपादन और अनुवाद हिंदी में हो चुका है, इसलिए बहुत लोग और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि गुजरात में सबसे ज्यादा इस समय गुजरात संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में सब सर्वाग्रगण्य हो रहा है। मुझे वहां अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा विश्व कॉन्फ्रेंस की कई 2.5 लाख की ऑडियंस थी और विश्व भर के विद्वान वहां एकत्रित हुए थे राजकोट जामनगर में। मुझको भी निमंत्रित किया, अस्वस्थता होने पर भी, अवस्था भी होने पर भी मैं उनके आग्रह से वहां गया। 2.5 लाख आदमी की ऑडियंस थी, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान वहां बैठे हुए थे, महाराष्ट्र के, गुजरात के और इधर उधर के। वहां अनेक जब भक्ति का विषय आया, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की उद्धृति हुई कि भक्ति परेशान विरक्ति समय अवस्था का प्रभाव होगा, भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैषतिक एक काल प्रपद्य मानस्य यथास्न दस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुद पायु। इस श्लोक के ऊपर वहां चर्चा चल रही थी, तो फिर रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि के कितने उदाहरण देकर के वहां की सभा में नाम की दिव्य महिमा का प्रकाश किया गया, लोग बेहोर हो गए और श्रीमन महाप्रभु की इस अनुपायनी अनुकंपा कादंबनी ने अवश्य देव श्री गोस्वामी के अंतर मर्म में उस दिव्य साहित्य की निर्छरणी का को उत्पन्न किया, जिसकी धारा ने अनेक धाराओं का संगम करते हुए समागम करते हुए विश्व के वांगमय को अनंत अमृत शिखर प्रदान किए, प्रेरणाएं भी लोगों को राधा गोविंद के चरणों में आकृष्ट किया और भाव की मंदाकिनी भाव के मंदारों के विकसित करके उनके मंदार के मकरंद से साहित्य वांगमय के प्रांगण को संरक्षित किया। क्या कहा जाए इनके विषय में, और लेकिन संपूर्ण विश्व वांगमय अगर जब किसी को भी स्वाध्याय करने का वो तो कठिन होता है, लेकिन ऐसे महान धरती पर हैं, सारे विश्व में विचरण करते हैं, हम शरीर से छोटे मोटे भी गमार ब्रजवासी भी कुछ इधर उधर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जब श्रवण करते हैं तो बड़े बड़े मनीषी भाव विभोर हो जाते हैं और औत्सुक्य पूर्वक उन ग्रंथों के अवलोकन की उत्कंठा लेकर के उत्साह लेकर के श्री वृंदावन में आते हैं और पढ़ करके चमत्कृत होते हैं, आश्चर्यान्वित होते हैं। इसलिए तो ये संप्रदाय का ये महान गौरव है कि सभी गोस्वामी पाद छह गोस्वामियों की महिमा अप्रतिम है, अद्वितीय है, प्रणम्य है, स्तुत्य है, परंतु रूप साहित्यिक विश्व में और दार्शनिक परिवेश में श्री रूप गोस्वामी पाद का जितना स्मरण देश के विभिन्न भागों में बड़ी बड़ी सभाओं में सम्मेलनों में विद्वत गोष्ठियों में और चिंतन के परिवेश में जितना प्राप्त होता है, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि अन्यत्र किसी और को वह सुयोग सुलभ नहीं है, और जो भी संपर्क में आता है और प्रमाण के रूप में दृष्टांत के रूप में काव्यात्मक निर्धरणी कल्लोलनी हो करके जिस प्रवाह से प्रवाहित हो करके बड़े बड़े नास्तिकों के अंतर मर्म का अभिसिंचन करके कृष्ण प्रेम वांछा कल्प तरु को उत्पन्न करके उसके फल परिपक्व फलों के रस और उसके सौरभ से अंतःकरण को इतना सौरभित कर देते हैं, साहित्य को इतना कृतार्थ कर देते हैं और सुनने समझने वालों को चरितार्थ करके उनको धन्य धन्य कृतकृत्य कर देते हैं। इसलिए ये तो साध्याय दिव्यदग्ध माधव की रचना की, तो देखिए कितना सिद्ध स्वरूप स्वयं श्री सत्यभामा जी प्रकट हो गई, क्योंकि बामा नायिका है और गोस्वामी ग्रंथों के आश्रय से प्रत्येक अष्ट सखियों में और किशोरी जी के श्री विग्रह में से एक एक किरण प्रकट होकर के द्वारका की अष्ट महर्षियों के भीतर प्रविष्ट हुई है। रुक्मणी जी के भीतर चंद्रावली जी की किरण और सत्यभामा जी के भीतर श्री राधा रानी की कृपा किरण, लक्ष्मणादि और दूसरी सब भद्रादि सत्यादि मित्रविंदादि अलग अलग श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध में इन देवियों का महर्षियों का यदि थोड़ा सा अवलोकन करें तो जहाँ जहाँ भी माधुर्य भाव की ऊर्मि और महात्मा आत्मा इस माधुर्य भाव की रश्मि का प्रवेश हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी निष्ठा में अपने अपने इष्ट के दिव्याति दिव्य उपासना संदर्भ में जो संबद्ध हैं आबद्ध हैं वे भी श्रवण करके विभोर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। मेरी तो अवस्था भी हो गई है, अस्वस्थ भी मैं अत्यधिक हूँ, अभी 3-3 ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन मैं तो महाराज जी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सका और उपस्थित होकर के थोड़ी सी शब्द सेवा समर्पित करने के सौभाग्य से अपने को वंचित करने के प्रलोभन को संवरण नहीं कर सका। यहाँ मैं उपस्थित हूँ श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री दास गोस्वामी पाद। संदर्भ के अनुकूल तो नहीं होगा, लेकिन मैं श्री दास गोस्वामी पाद की एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ। आज जगह जगह श्री राधे श्री राधे श्री राधे एक संकीर्तन करने की स्मरण करने की एक परंपरा सी पद्धति सी चल पड़ी है। श्री छोरी जी का स्मरण, उसकी आलोचना नहीं, आक्षेप नहीं उसकी, लेकिन अपने वैष्णव परिकर में एक थोड़े से इंगित में खास करके श्री स्वामी जी के सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं। दास गोस्वामी ने एक बात कही है कि राधा कृष्ण का विरह संभव नहीं है। उद्धव के सामने जब भ्रमर गीत में ये सप्त जल को जब वर्णन किए तो उद्धव बहुत विफल हो गए कि श्री कृष्ण कठोर हैं, ऐसी विभोर ऐसी अपनी प्रियसी वृंद को परित्याग करके वृंदावन से मथुरा चले गए हैं और ये यहाँ कितने विरह के ताप में संताप में विकल हो रही हैं, आकुल हो रही हैं। तो किशोरी जी ने उद्धव को बुला करके कहा कि देखो ये बाह्य लीला है, श्री कृष्ण हमारे वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए हैं, वो यही विराजमान है। अनया राधितो नूनम राशिया में अरि अनया, अनया कहते हैं संबोधन है ये, अरि अनया चक्रवर्ती पाद, मैं चक्रवर्ती पाद के आश्रय में कह रहा हूं, अरि अनीति वा ऐसा मत करो, ये जो गई हैं ये राधिका नहीं गई हैं, राधिता गई हैं, जिनकी आराधना श्री कृष्ण करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का आराधन तो सर्वत्र सबके सम्मुख हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो अत्यंत गोपनीय है, इसलिए राधिता को साथ में लेकर के निकुंज में निकुंज में प्रवेश करके तुम मेरी दिव्य दृष्टि से देखो रूणी श्रृंगार कैसा प्रसन्न कर रहे हैं श्री कृष्ण। और अभी थोड़ी देर में क्योंकि श्री किशोरी जी हम लोगों के साथ में विरहा भी नहीं कर रही थी, अपने आर्द्र और आर्तभाव को अभिव्यक्त कर रही थी, लेकिन तुम मेरी दिव्य दृष्टि से देखो कि श्री कृष्ण कितने आत्मविभोर होकर के प्रेमणा करणयते जपत्यथमुदा गायत्यथाल स्वयं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर रोमांचित हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, कंठावरोध हो रहा है और श्री राधे कहकर के वृंदावन की निकुंजों में विचरण करते हुए आत्मभाव से प्रिया जी का स्मरण और आवाहन कर रहे हैं। उतनी विराटपुर निकुंज के भीतर श्री राधा रानी नहीं है जितनी राधा रानी के मांग करने के समय प्राप्त हुए क्षण भर के विरह में कृष्ण विभोर विफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री वृंदावन की लीला बड़ी गुही है और विभिन्न संप्रदायों में सकिया परकिया भाव से परकिया भावे है रसिक उल्लास, लेकिन ये भाव है श्री कृष्ण की इतनी पत्नियां हैं, पत्नी व्यवहार नहीं है, सामाजिकता नहीं है, शारीरिक संबंधान्वय नहीं है, ये सब केवल भाव है, तत्त्व भाव से कृष्ण रसोपासना पूर्वक दिव्याति दिव्य असमुद्ध कृष्ण रसास्वादन में रत होकर के भाव कर उनका आस्वादन सब कर रहे हैं। और वो भाव की भूमि भावोत्सवेन भजतां रस कामधेनु, भाव के साथ में यदि भजन किया जाए यानी राधा कृष्ण की कथा लीला का पान किया जाए, आस्वादन किया जाए, तो जिस अनिर्वचनीय इस अनुभूति की स्फुटित धारा अंतकरण में स्फुजित होती है, उसमें रसिकों का समवाय निमंत्रित और निमग्न होकर के अपूर्वतम लीला रस माधुरी के सेवन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसलिए ये वृंदावन की रसोपासना, वृंदावन की इस अगाध रसधारा का अवगाहन, लेकिन इसका जैसा श्रीमंतरियों ने महाप्रभु गोपी गीत सुनते थे, इसी श्लोक तक सुनते थे, फिर भावावेश हो जाता था कि श्रवणम श्रवण ही परम भक्ति है, तत्त कथामृतम, भगवान के कथामृत को श्रवण करना, श्रवण करने से ही हमारे भीतर की स्नायुओं में से रस का श्रवण होगा, दंती सकार, और जब वो श्रवण होगा तो उसमें हमारे जन्मांतरों का तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीजितम कल्मषाकहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गणंती ते भूरिराजना। भूरिराजना की व्याख्या सबने आचार्यों ने बहुत विलक्षणता से किया है, चक्रवर्ती पाद की तो बात ही अलग है, परंतु अधिक समय नहीं, कुछ श्रद्धांत भावांजलि अब प्रणाम मात्र ही तो समर्पित कर रहे हैं। कथामृतम, जिन्होंने कथा का अमृत पिया है वे उन्होंने ही वास्तव में केचित वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, केचित वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य, व्यासो वदत्य खिल वेद पुराण विज्ञो नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। जिन्होंने भगवत स्मरण नहीं किया है, भगवत नाम संकीर्तन नहीं किया है, संत के मुख से भगवत कथामृत का सेवन नहीं किया है, उन लोगों को न वैराग्य हो सकता है, न अनुराग हो सकता है, न उनके भीतर आत्मोन्मेष हो सकता है, न सुविशेष के आस्वादन की पात्रता प्राप्त करना संभव हो सकता है। इसलिए तब कथामृतम, हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते डॉट 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 फिल अप द ब्लैंक्स है ना करते थे, तो इसके बीच में फिल अप द ब्लैंक है, तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है, लेकिन बोले जितने भी बाबा बैठे हैं महाराज शरीर से सिद्ध दिव्य महापुरुष बैठे हैं, कौन क्या हुआ है, सब कथा के मारे हुए हैं, कथा अमृतम,
कथा अमृतम।
हाँ, जिन्होंने एक बार किसी संत के मुख से रसिक के मुख से कृष्ण कथा का श्रवण किया है, उनकी व्यावहारिक बुद्धि मर गई है, उनके व्यवहार नष्ट हो गए हैं, उनकी जागतिक प्रवृत्तियां समाप्त हो गई हैं, और वे सब मृतम, और अपने एक प्रकार से संसार के लिए, बल्कि गोपियों का ही प्रमाण है, सबसे रास लीला का निर्मलम शब्द है, जहुर गुणमयम देहम, जब सब छोड़ करके आई हैं तो गुणमयम देहम, इन प्राकृतिक शरीरों को अपने अपने पति और पुत्रों के ऊपर फेंक करके तुम इनका अंतिम संस्कार करो, हम तो अपने दिव्य स्वरूप से गोविंद के लीला मंडल में प्रवेश कर रही हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ने की विषय नहीं है, मनीषी विद्वानों के मुख से श्रवण करोगे तभी तुम्हारे भीतर श्रवण होगा, यानी रस का उद्भाव होगा, रसधारा का प्रवाह होगा, और तुम्हारा इस रसिक जनों के मध्य में निर्वाह भी हो जाएगा, और तुम्हारे जीवन में तुम अपने आप अपने को वाह-वाह कह करके प्रसन्न हो जाओगे। इसलिए मृतम, जिसने कथा सुनी है वो मर गया, कहाँ रह जाएगा, पति पुत्र पति सुतान वयम भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते चच्युता गति गति विदस्तव दीति मोहिता पितव योषित कत्सरे निशि। कब कह रहे हो पृथ्वि आपकी वृजम ने हो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम आपके पास में आ गई हैं, और इस प्रकार से संपूर्ण उज्ज्वल नीलमणि में अलंकार कौस्तुभ में भक्ति सामर सिंधु में सत्य भामा जी के कहने से उसके दो भाग के ललित माधव और विदग्ध माधव इन सब सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, चिंतन करें, महापुरुषों के मुख से श्रवण करें। सबसे बड़ी तो हमारे भीतर उस रस का श्रवण हो जाएगा और जब श्रवण करके स्नायु मंडल हमारा आत्म चैतन्य जब शुद्ध हो जाएगा तो हम श्रवण हो जाएंगे, स्वयं संत की श्रेणी में आकर के अवस्थित हो जाएंगे और पारमार्थिक इस परम पुरुषार्थ से युक्त होकर के भगवत कथामृत सेवन और भगवत प्रेमामृत के पान करने के सब पात्र बन जाएंगे इतने बंधु। लेकिन इनके जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हमारे पास आधार एक ही है श्री मधुरूप गोस्वामी पाद के सदस्य ग्रंथों का, उज्ज्वल नीलमणि, वृद्ध माधव, ललित माधव प्रभृति इन सद ग्रंथों का, और उनकी बहुत फुटकर पर्यावरणी है, बड़े बड़े दिव्य श्लोक हैं, उन सब का सेवन करके हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को और भक्ति में अपना जो ये एक दिव्य परिवेश प्राप्त हुआ है इसमें आने का सौभाग्य को भी हम कर चरितार्थ करके धन्य धन्य हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री गोस्वामी ठाकुर स्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूं।
अभी आपके सामने हमारी महामुनिषि श्रीमद् कृष्णचैतन्यनाथाचार्य महाराज आपके सामने रूप गोस्वामी जी के अवतार के विषय में बहुत कुछ कह दिया है। रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों का कितने महत्व है, मां नाम के ऊपर एक श्लोक बनाया है तो महाप्रभु की बड़ा भाई खरीदार आदि जिसने उनके परिकार के बीच का पठन करके बड़ा आनंद किया है। तुंडे चांद वीर सिंह तुंडे वृंदावरी लक्षरी कर्ण तोर परंदी कदय दे कर्णार्थि हम देखी बहुत कभी हो चुका है संसार में इस प्रकार श्लोक का झंकार, रुगस्वामी जी का जो श्लोक का झंकार कहीं नहीं मिल सकता है। रुगस्वामी का ग्रंथों पर आपने बहुत विचार विमर्श किया है, उसमें एक तो भक्ति धारण का सिंधु भक्ति का पराकाष्ठा उन्होंने दिखा दिया, रुगस्वामी बात एक रसक भक्ति भक्ति धारण का सिंधु एक रसक शाम धारण का सिंधु एक उज्जवल निर्मल ग्रंथ ने रस का विचार किया है। रस का बिल्कुल समुद्र है, रस समुद्र है, रस सागर है, क्योंकि भगवान रसों को ही सा रस का आस्वादन करने वाले भक्ति का जो रस वो रस को आस्वादन करने के लिए किस प्रकार आस्वादन किया जाता है, किस प्रकार का क्रम है, ये सब गोस्वामी जी अपने भक्ति ग्रंथों में अपने प्रधानमंत्र सिंह ने भक्ति का पराकाष्ठा दिखा दिया। और प्रधानमंत्र सिंह के बाद उन्होंने उज्जवल ग्रंथ में सारा रस का वर्णन कर दिया। ऐसा कोई एक ग्रंथ आप नहीं दिखा सकते, हमारे समय नहीं
होने पर भी आए हैं
आपका दर्शन करने साल भर के। आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे।
गुरु जना ज्ञान को शांति शांति का स्वरूप तो है, हमें चिंतन करना है। गुरु जना ज्ञान को शांति, गुरु जना हमारे प्यार के अंगदान को भी बोला गुरु जना का ही है, उसको निंदा करते हैं। गुरु जना निजात को कांति अपनी अंग की जो छटाए हैं, मयूर पिछा दो सुचीन अवस्था, मयूर पिछा दो सुचीन अवस्था, मयूर पुच्छ के समान उस वस्त्र में एक अच्छा लगा हुआ है जीव को शांति का। और सुचीन अवस्था चीन वस्त्र पहने हुए हैं, तीन वर्ष ऐसा है उसमें जल प्रवेश नहीं कर सकता है, इतना मशीन इतना स्टिक है झिलमिला रहा है। तो गुरोजना हिंदी निजान को कांति मुरी को शिक्षा और तीन अवस्था श्री आदि का सरोज दासी गुरुकशन कौन है मंदिर श्री आदि का पाप सरोज दासी मंदिर धूप नाम का जो मंदिर उनका मैं भजन कर रहा हूं। एक श्लोक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो रूप गोस्वामी जी का शिष्य थे, शिक्षा गुरु थे, गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का शिक्षा गुरु थे। तो मंदिर भाग में वो कह रहे हैं गोस्वामी प्राथमिकता सभी पास आए एक श्लोक पहले प्रथम श्लोक कहते हैं
सभी रूपमंजरी कम रूपमंजरी ये श्लोक है।
अनाथ भक्ति का आया, अनाथ भक्ति का आया तुम्हारे अभी विवाह संबंध नहीं हुई है, परंतु तुम्हारा उष्ठार धर्म में एक दंतक शकर कहां से आया तात्पर्य क्या है आप अनुभव करिए। प्रिया के सहित पीतम के जो बिहार वो बिहार में उस राधा जी के उष्ठ में पीतम के जो दंतक खत लगा डाला हुआ है वो रुगस्वामी का स्वर के प्रकट हो गया। तो रुगस्वामी क्या चीज है आप इसमें अनुभव करिए। अभिन्न श्री राधारानी का राधा रानी बोलते भी कोई दोष नहीं हो सकता, अभिन्न श्री राधिका है और रुद्र जी की कृपा के बिना दिवर जगन की पास में जाना ही असंभव है, उनका पास पूछना भी असंभव है। इसीलिए युगस्वन हमारे सर्वस्व धन है, वह हमारे लिए सब कुछ है, दे सकते हैं कर सकते हैं। आप समय विशेष कह लेंगे हम हमारी परम
Thank you. गुण और निगुण सिद्धांत की ओर न जाकर के सामान्यतया श्री रूप गोस्वामी पाद जी का शुभ पवित्र संस्मरण करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। देखिए हम सभी चाहते हैं कि कुछ लाभ हो। ये लाभ शब्द ऐसा है जो इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। सभी लाभ चाहते हैं, कोई छोटा लाभ, कोई बड़ा लाभ, कोई उससे बड़ा लाभ, उससे भी अधिक लाभ, उससे भी अधिक लाभ। लाभ की आकांक्षा हमारे अंदर रहती है, निश्चित है। तो आज हम सब यहां पर जो समवेत हैं, एकत्रित हुए हैं, किस लाभ की आकांक्षा से? बोले अरे भाई, ये तो सामान्य लाभ नहीं, ये तो परम लाभ है। अयम ही परम लाभ यथास्थान समागम, साधुओं का समागम है, इस सज्जनों की सभा है, ये संगति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। श्री वृंदावन धाम के सेवा कुंज स्थित श्री गौड़ीय मठ, श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ जो नाम से यह जो स्थल है परम पुनीत है और परम लाभ को देने वाला है। अब इसी लाभ के लिए सब बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सबसे पहले श्रवण करना चाहिए। श्रवण परम आवश्यक है। भक्ति के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तो श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा है तो हम चाहेंगे कि इस भक्ति के राज्य में प्रवेश करें। यदि श्रद्धा नहीं है तो भला कौन चाहेगा कि भक्ति क्या है और भजन क्या है और मठ क्या है और आश्रम क्या है। हमारे अंदर श्रद्धा है, इसीलिए हम आते हैं। आरोप श्रद्धा, श्रद्धा को लेकर के हम आए। इसके बाद सत्संगति साधु जनों की संगति चटक आरोप श्रद्धा तथा साधु श्रद्धा। अब साधु जनों की संगति में क्या है, प्रसाद बनेगा, गोष्ठी होगी। जी ऐसा प्रसाद है जिससे कि हृदय में सात्विक भाव होता जाता है। यह ऐसा प्रसाद है जिसको ग्रहण करने से हृदय पवित्र हो जाता है और ऐसी प्रसन्नता रहती है जिस प्रसन्नता का भाव इस संसार में नहीं होता है। क्योंकि प्रसाद शब्द का एक अर्थ है प्रसन्नता, प्रसाद से प्रसन्न है। और साधु की संगति में करना क्या है, पहले कुछ नहीं विचार रहे हो और सुनो, श्रवण करो। महाराज ने जो कहा एक शब्द को मैंने पकड़ लिया, श्रवण। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, न मनन होगा, न ध्यान होगा, न प्रवृत्ति बनेगी, न निष्ठा रहेगी। और भक्ति को और दूर है, भक्ति कहने से भक्ति नहीं मिलती। तो साधु संगत और इसी सत्संगति में आकर के ही हम जानते हैं कि भक्ति क्या वस्तु है। जी हाँ, भक्ति केवल कहने मात्र के लिए नहीं, भक्ति केवल पढ़ने के मात्र के नहीं, केवल पठन पाठन कर लिया, ग्रंथावन लोकन कर लिया, जान लिया भक्ति है और भक्ति भगवान को प्रिय है, जान लिया सुन लिया सब कुछ है, लेकिन जब तक भक्ति को वास्तविक रूप से नहीं समझा तब तक भक्ति है क्या, बस भक्ति से परिचय वास्तविक परिचय हमको नहीं प्राप्त होता। भक्ति के राज्य में प्रवेश करना, देखिए आज जिनका परम पवित्र संस्मरण करने के लिए हम बैठे हैं, इस वक्र का जो नाम है उसका जो पहला पद है श्री रूप। श्री रूप क्या है, उनके व्यक्तित्व, उनके विशाल व्यक्तित्व, उनके दिव्य और अनुपम कृतित्व के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, आप जानते हैं, आप सभी दिव्य हैं, पंडित हैं, जान है। तो केवल इतना समझ रहे कि श्री रूप गोस्वामी पर देखिए हमारे सामने एक श्लोक लिखा है, आराध्यो भगवान ब्रजेश नय श्रद्धावनिंदावन रम्या काचिदुपासन व्रजवधू मार्गी न जातल जातमस्तक रूप है। श्लोक शोभाय मार्ग है, श्रीमद भागवतम प्रमाणमलम प्रेम कुमत्तुम श्री चैतन्य महाप्रभो रवद्रमिदं तद्दानो परः। भगवान ब्रजेश ब्रजेश नंदन 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 श्री कृष्ण ही एकमात्र आराध्य देव है। जी हाँ, आराध्य देव ने जान लिया तो हमारे जो आराध्य देव है वही इष्ट है। तो आराध्य देव के लिए हमको क्या करना है और क्या बनना है उनके निमित्त, हमारे आराध्य देव के लिए आराधक बनना है। बोले आराधक बनकर के क्या करना है, बोले आराधना करनी है। आराधक अपने इष्ट आराध्य देव की क्या करता है, आराधना करता है। आराधना की प्रारंभ में जो आ शब्द है ये बड़ा तात्पर्य व्यंजक है। आ कह देते हैं असम्यक असमानता, इसका भी वास्तविक रूप से राधा उपासना, एक दूसरा शब्द है उपासना शब्द, थोड़ा सा अंतर है तात्पर्य में, लेकिन हम दोनों को पास पास कर सकते हैं समार्थक शब्द के रूप में। यद्यपि उपासना और आराधना में अर्थ में अंतर है, यानी कि वास्तविक रूप से शास्त्रीय विधि के रूप अनुसार जो उपासना होती है उसको हम आराधना कह सकते हैं। शास्त्रीय इसमें भी इसके दो अर्थ हैं, वेद शास्त्रीय जिसमें श्रुति और तदनंतर स्मृति आती है, और एक है रस शास्त्रीय पद्धति। रस शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उचित और सम्यक रूप से उपासना करना ही आराधना है। आराधना शब्द में एक शब्द ध्वनित हो रहा है, जरा देखिए इसमें दो जो वर्ण है, जी हाँ, राधना आराधना शब्द में जो दो वर्ण है उसको देखिए, एक है र और एक है ध। ये र और ध आराधना के दो वर्ग मिलकर के एक ऐसी दिव्य सुदिव्य सुक्रांतिमय प्रतिमा बनती है, उस प्रतिमा का नाम क्या है जानते? उसका नाम है राधा। इस आराधना में राधा क्योंकि आराधना का पूर्ण पेड़ सारा मूर्ति है श्री राधा, क्योंकि तो इनकी आराधना उत्कृष्ट आराधना है राधा। तो श्री राधा की आराधना को उसकी एक राधा कृपा की एक कणिका को प्राप्त करके यदि आराधना की ओर अग्रसर हो सकते हैं कुछ बताइए।
समय
ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो अपने आराधने की आराधना करने के लिए जिसकी कृपा की याचना उसके लिए अपेक्षित है सर्वप्रथम वो है श्री राधा। राधा की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगी कृष्ण की आराधना पूरी नहीं हो सकती। जी हाँ, ये आराधना आराध्य शब्द ज्योतिष करता है आराधना को, और आराधना में जो दो वर्ण है ल और ध व्यंजित करते हैं जिस भाव को वो है श्री राधा की कृपा कला। राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के पश्चात ही श्री कृष्ण की आराधना, राधा कृपा को पृथक रख करके हम कृष्ण की आराधना नहीं कर सकते। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय पक्षी प्रभु जी की भी देन है जिसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। धाम उनका अपना निजी स्वकीय धाम, अपना धाम, और क्या है वृंदावन? वृंदावन, वृंदावन उनका अपना धाम किसका? ब्रजेश बने श्री कृष्ण। दूसरा श्लोक के साथ ही दिव्य वृंदारण्य ऊपर है श्रीमद रत्नाकार सिंहासन स्थल श्रीमद राधा श्री गोविंद देव गोविंद शब्द है श्री कृष्ण का ये नाम गोविंद कृष्ण की बात गोविंद गोविंद की बात माधव ये बड़े मनोहर शब्द है। ये गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? गोविंद शब्द के अनेक अर्थ हैं। शास्त्रीय विधि के अनुसार व्याकरण के अनुसार इसके अनेकों अर्थ निकलते हैं, लेकिन मात्र एक अर्थ को मन देखते गान बिंदती इति गोविंद। अब ये जो काम शब्द है इसका अर्थ आप लगाइए भूमि, और जो विंदति का अर्थ आप लगाइए विंदति के भी अनेक अर्थ है। तो विंदति का एक अर्थ है, विशिष्ट अर्थ है प्राप्त करना, जो अपनी भूमि को विशेष रूप से प्राप्त है। एक ऐसी भूमि है जानते हैं जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, श्री वृंदावन की भूमि, पवित्र भूमि, पवित्रतम भूमि। इस भूमि को जो हमेशा प्राप्त है ऐसे जो भगवान परमाराध्य श्री कृष्ण है उनका नाम गोविंद साधक होता है। काम जी एक बात बताइए, इतने तीर्थ और पुरी और धाम के रहते हुए आखिर उन्होंने वृंदावन को ही अपना निजी स्वकीय प्रिय धाम क्यों चुना? यदि प्रश्न है तो वृंदावन में ऐसी क्या बात है इसके लिए श्री कृष्ण ने इसको अपना निजी धाम बनाया। आप सभी जानते हैं एक सबसे बड़ा कारण है अन्य किसी स्थल को उन्होंने अपना निजी पवित्र धाम नहीं चुना केवल वृंदावन को। इस धाम का नाम है वृंदावन। हम अधिक विस्तार में न जाते संक्षिप्त में अपने भाव को प्रकट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसका नाम है वृंदावन। वृंदावन शब्द का एक अर्थ है तुलसी और वृंदा जो है ये श्री राधा का एक नाम है। विश्वभारती श्री श्री राधा उनका एक नाम है वृंदा। उनका वर्ण है वृंदावन में यदि संधि विच्छेद करें तो वृंदा अवन शब्द भी निकल क्या है जिस स्थल पर आकर श्री राधा के भक्तों का अवन यानी रक्षण होता है। श्री राधा के पराश्रय भूत यह जो भूमि है इसमें भक्त जनों का संरक्षण प्राप्त है श्री राधा। और जहां श्री राधा है उनका अपना निजी आलय है उन्हीं का भी अपना मन है। अब इस राधा की पवित्र भूमि को छोड़कर भला और किस स्थल को अपना आकर्षण बनाए जहां श्री राधा वही श्री गोविंद प्रदीप राधा श्री गोविंद देव पहले राधा का नाम है उसके बाद नित्य लीला नित्य पीड़ा राम और उनकी उनके साथ रस की संतुष्टि करने के लिए सखियों का वृंद है मंजरियों का वृंद है सबको लेकर के श्री वृंदा देखिए भावमयी श्री राधिका भावमयी श्री राधिका और रसमय कृष्ण पूर्ण श्रृंगार। राधा जो है भावमयी है और कृष्ण जो है मधुर श्रृंगार भावमयी श्री राधिका कृष्ण मधुर श्रृंगार और सखियां रस विस्तारिणी ब्रज में नित्य विहार। सखियां जो है रस की विस्तार करने में तो ब्रज में उनका नित्य विहार है सदा सर्वदा उनका विहार है। परंतु चरण जो कहते रहे हैं कि उनमें वियोग और विनय संभव नहीं है कि नित्य विहार शब्द से होती वो सदा सर्वदा मिले हुए हैं साथ यहां सिंगापुर स्वामी के प्रति ही हम आए तो कोई गम्य काशी उपासना कोई उपासना ऐसी है जो सुरम्य है रमणीय है ब्रजवधु पर बजा कर ब्रजवधु ब्रज रमणियों के बजा मना गणों के द्वारा जिस उपासना पद्धति जो प्रकट है उस उपासना पद्धति का नाम है रागानुराधक है रागानु का उपासना यशी गौरी संप्रदाय में विशेष इसका स्थान है महत्व है रम्याकाशी उपासना प्रचल तो इस रागानुरा भजन पद्धति इसकी स्थापना करना श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अपना परम अभीष्ट था
वास्तव में
परम अभीष्ट था कलयुग पावनावतार परम प्रेमावतार शचीनंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मनोभीष्ट मन की परम वांछा यही थी राधानुदा भक्ति की स्थापना और उन्होंने स्वयं इस कार्य को मुख्य रूप से कराया इसके द्वारा उसने सर्वप्रथम श्री रूप गोस्वामी का निर्माण किया सर्वप्रथम श्री रूप गोस्वामी का निर्माण तत्पश्चात सनातन देखिए जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जी गोपाल भक्त दास रघुनाथ छह घोषणाएं गोली चंद्र छह घोषणा पादों का नाम जोड़ दिया गया है ये चैतन्यमृत में भी देखते हैं छह घोषणाएं शिक्षा गुरु जी आया श्री नवप्रकाश ठाकुर ने भी जो है रखते हैं हरिनाम संकीर्तन है छह घोषणाओं का नाम दिया है सर्वप्रथम रूप का नाम यद्यपि सभी ईश्वर गोस्वामी प्रत्येक अपनी अपनी महिमा से मंडित और उनका जो अवदान है प्रत्येक का अपने अपने अनुसार महत्वपूर्ण है किंतु श्री रूप पाद जो है इनमें सर्वप्रथम है इसलिए श्री रूप का नाम पहले लिया पदे रूप सनातन रघुजी बहु श्री जी बगोपाल सबसे पहला नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम है श्री गोपाल उसके पश्चात सनातन यद्यपि सनातन गोस्वामी पाद वायुकृष्ण है तथापि चूंकि परम करुणावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा को सर्वप्रथम प्राप्त करने वाले उनके परम कृपा पात्र श्री रूप गोस्वामी चरण है इसलिए उनका नाम सबसे पहले दिया जाता है कहीं कहीं हम जहां रूप है वही सनातन है जहां सनातन है वही रूप है इस मठ में तो दोनों है रूप सनातन बहुजा मठ कोई किसी से महिमा में न्यून नहीं है कोई कम कोई अधिक ऐसा नहीं सभी मान्य समान है तो रूप पाद का नाम प्रथम इसलिए लिया गया है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो मन की अभिलषित वस्तु की स्थापना जिन्होंने इस पृथ्वी तल पर सर्वप्रथम किया है ऐसे श्री रूप गोस्वामी का जी बन जाए जी हाँ श्री कृष्ण मनोभीष्टम मन के प्रत्येक भाव को पहुंचा जाए और तदनुसार मानो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से उनकी करुणा को प्राप्त करके जब शक्ति का संचार का अनुभव करते हैं श्री गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उस भाव उस संकल्प और उस इच्छा की पूर्ति उन्होंने जो है अपने कृतित्व नाना प्रकार के दिव्य ग्रंथों की रचना करके उन्होंने इस पृथ्वी तल पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की मन की इच्छा के अनुरूप सिद्धांत को और भक्ति की उपासना को शक्ति संचार किया श्री चैतन्य महाप्रभु काले न वृंदावन की जो लीला कथाओं के अनुसार जो लीला स्थल है वो काल के प्रभाव से लुप्त हो गए थे। वृंदावन और वृंदावन के अंतर्गत ब्रज की समस्त लीला क्षेत्र लुप्त हो चुकी थी कली के प्रभाव से। तो और ये जो रस सिद्धांत है ये जो भक्ति मार्ग है ये भी सब समाप्त हो चुका था। पुनः जागृत करने के लिए लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए लुप्त लीला स्थलियों को प्रकट करने के लिए श्री रूप और सनातन दोनों में अपनी शक्ति संचार कैसी शक्ति मतलब कृपा की शक्ति भगवान की अनेक शक्तियां हैं अनेकानेक शक्तियां हैं क्योंकि परम शक्तिमान है प्रभु और जानते हैं सबसे प्रधान और सबसे उत्तम शक्ति कौन सी है उनकी उनकी सबसे उत्तम सर्वोत्तम शक्ति है उनकी कृपा शक्ति। चूंकि उनके अंदर कृपा शक्ति है इसलिए वो भक्तवत्सल है और इसीलिए संभवानी जुड़े जुड़े अवतीर्ण होते हैं। श्री भगवान परम शक्तिमान जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि हो सकती है जिनकी विभूति मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में प्रलय उपस्थित हो सकता है वो तो अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा सब कुछ करने में समर्थ है फिर उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। कृपा शक्ति उनको चैन से रहने देगी। कृपा शक्ति कहती है कि प्रभु आप अवतार क्यों क्या भक्त वत्सल और भक्त चाहते हैं और इन चरणाय और साधु इसका उल्लेख सबसे पहले किया गया दुष्कृतियों का विनाश धर्म की संस्था होना यह तो गौण बात है मुख्य बात यह है कि परित प्राणाय साधु भक्तों के लिए भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। कृपा शक्ति मूल है और इसी कृपा शक्ति का ही उन्होंने संचार करके श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी को वृंदावन में भेजा। वृंदावन के लिए तो बड़े उतावले होते थे महाप्रभु जी बेचैन हो जाते थे व्याकुल हो जाते वृंदावन वृंदावन कहकर के उन्मत्त हो जाते लेकिन वो उनको नीलाचल धाम में ही अंतिम समय अधिक समय बिताना पड़ा क्योंकि उनकी माता की आज्ञा थी मंत्री अख्यारामी स्थापित नीलाचल शारीरिक रूप से उनकी शारीरिक उपस्थिति नीलाचल में जगन्नाथ धाम में अवश्य लेकिन मानसिक रूप से उनकी उपस्थिति श्री वृंदावन हमेशा वृंदावन के लिए सोचते हैं चूंकि वो नहीं जा पाए इसलिए रूप सनातन को भेजा कि हे सनातन जाओ वृंदावन में ब्रजमंडल में और मेरा रूपपाद परम निकट वर्ती शब्द आता है नियर डिस्टेंस नियर डिस्टेंस एंड येट स्टे रूप गोस्वामी पाल से चेतन मन और उनके मन की इच्छा का प्रतिबिंब उनके हृदय में हो जाता था। वो सफर चाहते थे कभी इस समय यह चाहती है क्षमा करें कुछ मेरा स्वभाव है कुछ विस्तार में चले जाते हैं तो देन समय को देखते हुए तो द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट इस उपलब्धि टीवी का प्रयोग कहां किया जाता है आप सब जानते हैं परम प्रिय के श्रीमान महात्मा और जो जिसके परम प्रिय होते हैं सामान्यतया प्रिय नहीं परम प्रिय उसमें अंतरंगता घनिष्ठ होती है और जिन दो प्रियजनों के बीच में घनिष्ठ अंतरंगता हो तो एक के अंतर की बात दूसरा तुरंत समझ लेते हैं बिना बताए बिना बोले मेरे प्रियतम क्या चाहते हैं उनकी इच्छा की इच्छा का प्रतिबिंब उनके हृदय में अपने आप आ जाता है वो जानता नहीं है कि मेरे प्रिय किसने क्यों चाहे एक में दासी भाव एक दासी भाव ग्रहण करके और दूसरे जो है पर कृपामय है कृपाई श्री गुरु शब्द कृपा जी ने श्रीमद महाप्रभु जी की चरण वंदना करते हुए कहा था नमो महामनान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम कृषि नमः इस श्लोक को जरा देखिएगा शुरू में भी नमः और अंत में भी नमः आदि में नमस्कार और अंत में भी नमस्कार ये मात्र प्रणाम मंत्र नहीं है प्रणाम मंत्र तो है ही इसके अतिरिक्त ये मंत्र जप्य है और इसके ऋषि कौन है मंत्र द्रष्टा और मंत्र प्रयोक्ता कौन है साक्षात हर मंत्र में देखा जाता है ऋषि कौन है छंद क्या है और देवता कौन है अनुष्टुप छंद देवता साक्षात कलयुग पावना अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रीत्यर्थ यदि इस मंत्र का जप करें निश्चित और सुनिश्चित ही श्री कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हमको हो जाएगी ये प्रणाम मंत्र होने के साथ साथ ये मंत्र जब के योग्य की है नमो महामनान्याय नमस्कार करते हैं भक्ति परक है और नमस्कार एक बहुत बड़ा अंग है भक्ति का जी हाँ नमस्कार भक्ति का अंग है भक्ति के आचरण में यदि नमस्कृति नहीं है तो भक्ति जो है अधूरी है नमस्कार परम आवश्यक है नमस्ते नमस्कार प्रणाम नम शब्द संस्कृत का है और व्याकरण कहता है कि यह जो है अव्यय है नमस् और इसका जो है इसमें दो वर्ण है न और म ये बड़े भाव व्यंजक वर्ण है जी हाँ न नट और मस्तक मस्तक को अवनत करो तो नमस्कार होगा मस्तक को झुकाओ नत मने झुकाना और ये मस्तक जो है ये अंग इस अंग का नाम है उत्तम अंग शरीर के सभी अंगों में उत्तम अंग कौन सा है मस्तक क्योंकि सर्वोपरि है से सबसे ऊपर रहता है जी हाँ इसको है क्या बोलते हैं सर्वोपरि है मस्तक जो सर्वोपरि है उस उन्नत मस्तक को शरीर के उत्तम अंग को अवनत करना बड़ा कठिन है उत्तम अंग कहेगा मैं क्यों झुकूं जानते हैं इस उत्तम अंग में एक महाशय बैठे हैं वो महाशय मस्तक को झुकने नहीं देते नहीं नहीं मस्तक नहीं झुकेगा मेरा नाम उत्तम अंग है, मैं क्यों नहीं जानते हैं महाशय कौन है? जानते हैं, इस महाशय का नाम है अहंकार। यह अहंकार महोदय प्रत्येक के उत्तमान मस्तक के ऊपर विराजमान है, मस्तक को झुकने नहीं देता। तो इस मस्तक को जब तक नहीं झुकाओगे तब तक प्रणाम नहीं होगा। उत्तमान को झुकाना ये परम आवश्यक है। तो उत्तमान जब झुकेगा सारा शरीर झुक जाएगा अपने आप स्वतः। प्रणाम के जितने भी प्रणाम की जो विधि में सबसे पहले आता है शिखर सा, मस्तक से, मस्तक से प्रणाम। रविन्द्रनाथ ठाकुर परम वैष्णव का भी परम वैष्णव कवि माने गए जी हाँ। उन्होंने अपने भगवान से क्या प्रार्थना, क्या विनती किया है, क्या विनती करते हैं कि हमारे माथा नोटों को ले जाओ कि तुम्हारे चोरों में हो जाए। आराध्य देव आप कृपा करके मेरे मस्तक को झुका दीजिए आपके चरण की धूली के नीचे। मुझे कौन सी बात हुई, मस्तक आपका है तो मस्तक झुकाने का मतलब है नमस्कार क्रिया के द्वारा प्रथम नमस्कार और अंत में नमस्कार नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने लोगों स्वर्ण पाठ का निर्माण किया। महावरण्य महादानी, महादानी किसे कहते हैं जो महान वस्तु को प्रदान करे, और महान वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेमा भक्ति है, वो है महान वस्तु। तो उस महान वस्तु के प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र को महावदान्य कहकर के शिवों को स्वर्ण पाठ में प्रेरणा किया। महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कौन है? कोई साक्षात कृष्ण है, कृष्ण है तो कृष्ण है, और इनका नाम परिवर्तन होकर के कृष्ण चैतन्य नाम है, इनका नाम से कृष्ण चैतन्य। तो अपन की लीला में ये श्री कृष्ण श्यामल सुंदर थे, लेकिन कलयुग में गौरव चेतना गौरवर्ण के होकर के मेरे प्रभु अवतीर्ण है। तो हे महाप्रभु आपको नमस्कार, नमस्कार। ये महाबरान्य उनकी जो महाबरान्यता है, महान वस्तु श्री कृष्ण प्रेम को प्रदान करने की जो उनकी लगन है, उनका संकल्प है, उन्होंने तो किया ही संकीर्तन के माध्यम से। अपने संकीर्तन परिकरों के साथ श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री अत्यंत प्रभु जी के साथ मिलकर के किया, लेकिन अन्य रूप से इन्होंने श्री रूप और सनातन के द्वारा इसका परिचय किया है। श्री रूप गोस्वामी बात के संबंध में दो तीन बात और बताएंगे आपको। देखिए श्री रूप गोस्वामी पाठ थे नहीं है कहा किसी बदला में एक जो गौरी वैष्णव नहीं थे, ऐसे एक सन्यासी वैष्णव सन्यासी नहीं मेरे पिताश्री के पास आए थे और उनसे कहा कि भक्ति के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, तो आप कृपा करके हमको भक्ति के बारे में कुछ समझाइए, कुछ सिखाइए। बहुतों के पास गया लेकिन कोई स्वीकार नहीं करते, बोलते आप वैष्णव नहीं, आप क्या सीखोगे? पिताश्री ने कहा अच्छा हो ऐसा करिए, आप जो है दो दिन बाद आइए मेरे पास, मैं वो बताऊंगी भाई, समय है व्यस्त। अब देखिए प्रभु की कृपा कब किस पर होती है मुझे नहीं पता। यमुना तट पर रहते थे वो, रात्रि में सोए हुए हैं, एक शिला तल पर, गर्मी का मौसम था, एक शिला के ऊपर सोए हुए थे, उनके पास में एक दूसरी शिला थी, तो सोकर के अर्धजागृत और अर्धसुप्त अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें तो आधे जगे हुए हैं और आधे सोए हुए हैं, न तो पूर्ण निद्रित हैं और न ही पूर्ण जागृत हैं। इसी रूप में वो क्या देखते हैं कि उनकी दूसरी शिला के ऊपर एक दिव्य विभूति विराजमान है, जिनके शरीर से दिव्य क्रांति निकल रही है और बहिर्वास बहुत अल्प बहिर्वास पहने दिव्य कांतिमय शरीर उनके पास बैठ करके बहुत ही कृपा दृष्टि पूर्वक देखते हुए उनसे विभूति ने यह कहा कि आप भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बताता। वो एकदम ससंभ्रम होकर के उठे और उठकर के ससंभ्रम स्थिति में उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। बोले मैं रूप गोस्वामी। देखिए कब किस पर किसकी कृपा हो जाती है, और आप जानना चाहते हैं तो आप भक्ति यथावत सिंधु का अध्ययन करें। मेरे पिताश्री का नाम लेकर के बताया श्री नृसिंह वल्लभ गोस्वामी ने। वो एकदम प्रातःकाल उठ करके बेचैन होकर रोते हुए आए मेरे पिताश्री के पास और उनके पैरों पर लेते बोले क्या बात है भाई, क्या शांत होइए, आप सन्यासी हैं, आप मुझको क्यों प्रणाम करते हैं, आप बैठिए शांत होइए। तो रोते हुए बोले कि मैंने पाया और फिर खो दिया, मुझको मिले फिर छोड़ के चले गए, जब हम उनके चरण स्पर्श करने गए तब तक वो गायब हो चुके, मैंने पाकर। बोले बताओ, बोले उन्होंने कहा मैं रूप गोस्वामी। उन्होंने आदेश दिया आपके पास भक्ति रसामृत ग्रंथ ग्रंथ को सीखने के लिए, तो मैं आपके पास आया और आप हमको भक्ति रसामृत ग्रंथ का अध्यापन करें। तो इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी मनुपाल अभी भी है, एक रूप से वृंदावन में और दूसरे रूप से मंजरी के रूप में श्री रूप मंजरी का श्री श्री निकुंज सेवा में हमेशा वो विराजमान है और दोनों रूपों से भक्तों को कृपा करते हैं। और बात बहुत कुछ बताने की समय की सीमा है, कुछ भूल त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि तो मैं कभी भावावेश में इधर उधर बह जाता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप क्षमा करें, बोलना तो और ही कुछ जाना था श्री रूप गोस्वामी बात के संबंध में, बस इतना ही कहकर के उनके श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में बारंबार बारंबार प्रणाम करके उनसे यही कृपा की याचना करते हैं कि हे आप आगे ही हैं और निश्चित जानिए इस धर्म सभा में वो कहीं है और हम सबको आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद कृपा की याचना करते हुए अपने मंत्र को विराम देता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम।
गोस्वामी जी महाराज बहुत विस्तार, मैंने उनके श्री सिंह बल्लभ गोस्वामी जी को देखा था और उनके उनकी व्याख्या और भागवत की रस पर जाती अद्भुत विलक्षण से
विषय पर बोलते थे
और वृंदावन के एक मैंने क्या कहें मणि से के
उनके ये सुयोग्य पुत्र
जैसे कुंज बिहारी गोस्वामी है, पिता का गुण तो आना चाहिए। हम लोग आशा लगाए हुए बैठे थे कि रूप गोस्वामी के संबंध में इनके मुख से और भी वैशिष्टों को समझेंगे सुनेंगे। विद्वान है, प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्तिगत व्याख्यान में पैठी संज्ञा और रूप गोस्वामी के संबंध में बहुत थोड़ा अभी आरंभ ही करते हैं और पैठ चल करके दूसरी जगह चला जाता है। शब्द की व्याख्यान है, अद्भुत विद्वान है, विद्वता जाएगी कहां। इसलिए हम लोग इनकी शब्दों की व्युत्पत्तिगत ये सब सुन करके बहुत प्रसन्न है, प्रसन्न हुए। किंतु अगले वर्ष इनको पुनः अभी से निवेदन करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि अगले वर्ष श्री रूप गोस्वामी के विशेष वैशिष्टों पर अधिक जोर करके और हम लोगों को समझा। दूसरी बात, हमारे प्रधान अतिथि गौड़ीय वैष्णव के एक अत्यंत उच्च कोटि के ज्ञाता और ऋषि वैष्णव है लक्ष्मी नारायण। आप लोग उनके मुखबंद से ही पहले जो सुना वो आप समझ सकते, एकदम ठीक टू द पॉइंट बोलने वाले और विद्वान है। मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि संक्षेप में आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि समय काफी हो गया है। मैं तो सोचता रहा था ये 7:45 शेष कर दूंगा, किंतु नहीं हुआ। आप और कल भी आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आज समय कम रहेगा। अगले वर्ष जो
आज्ञा मिली है कि आप संक्षेप में कुछ रूप गोस्वामी जी की विषय में आए कहिएगा। आप बता के आए थे